मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग निरंतरता को कैसे साधें, कैसे बनाए रखें, पिछले दो एपिसोड से इस विषय पर बात कर रहे हैं और इसी विषय को इस एपिसोड में भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसकी शुरुआत मैं एक सिद्धांत वाक्य से करने जा रहा हूं और सुनकर आपको अटपटा सा लगेगा कि ये कौन सा सिद्धांत वाक्य है जिसे इस पर अप्लाई किया जा रहा है। यह सिद्धांत वाक्य है आयुर्वेद की पद्धति पर। आयुर्वेद, हमारे चरक साहब इसके एक तरह से जनक माने जाते हैं, तो चरक संहिता के तहत एक बहुत अद्भुत किस्म का सिद्धांत लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो भी वनस्पति जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी वनस्पति जिस स्थान पर उत्पन्न होती है उसी स्थान पे रहने वाले लोगों का इलाज उस वनस्पति से किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि अमेरिका में कोई वनस्पति पैदा हुई है और उस वनस्पति को हम हिंदुस्तान ले आए और उससे दवाई बना करके हिंदुस्तानियों का उससे इलाज हो जाए। तो चरक साहब कहना यह चाह रहे थे या चाह रहे हैं आप कह लीजिए कि एक पर्यावरण होता है, उसकी उसका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है, मनुष्य भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, वनस्पति भी उसी इकोसिस्टम में पैदा हुई है, तो उन दोनों में तालमेल है। तो वहां की जो जलवायु है, हवा है, सारी चीजें जैसी हैं वनस्पति के लिए भी हैं, मनुष्य के लिए भी हैं, तो वनस्पति ने भी अपने को इकोसिस्टम के हिसाब से ढाला है और व्यक्ति ने भी ढाला है, तो दोनों का जो मैच हो सकता है वो दूसरी जगह की वनस्पति से या दूसरे जगह के व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस सिद्धांत का निरंतरता से क्या मतलब है? निरंतरता से इसका सीधा मतलब इस बात से है कि देखिए, मैंने पहले ही दिन आप सबसे यह बात कही थी कि जो निरंतरता या कह लीजिए जीवन की जो दूसरी समस्याएं होती हैं वो सबकी अपनी अपनी होती हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, इसीलिए उसका समाधान भी अपने अपने ढंग से ढूंढा जाना चाहिए। तो यहां भी मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इसका जो समाधान भी होगा वह अपने अपने ढंग से ही होगा और तभी सही मायने में आप समाधान ढूंढ पाएंगे। और इसीलिए दो दिनों से मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं और मुझे यकीन है कि कल जो मैंने आप सबको होमवर्क दिया था उसे भी आप लोगों ने पूरा किया होगा। तो मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया है और जो मुझे मेल मिले हैं उन मेल में से मैं स्पेशली एक मेल का उल्लेख करना चाहूंगा जो मुझे कंवलजीत कौर जी ने भेजा है। कंवलजीत कौर, इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने लिए निरंतरता के रास्ते की तलाश की। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मां, तुम ये बताओ कि पिछले 50 साल से तुम भोजन बना रही हो और तुम लगातार बनाती ही जा रही हो, क्या तुम्हें ऊब नहीं होती? क्या तुम्हारा मन इससे अलग होने का नहीं करता? तो उनकी मां ने पूछा कि ये बताओ कि तुम इतने दिनों से खा रही हो, भोजन कर रही हो, तो क्या तुम्हें ऊब होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊब नहीं होती। अब आप देखिए कि बात इतनी सी थी और कंवलजीत जी ने इस वार्तालाप को मेरे पास लिख करके भेजा है। इसके बाद कुछ उन्होंने और भी पॉइंट्स दिए हैं, मैं उनके ही पॉइंट्स को आप सबके सामने आज रखना चाहूंगा। अब आप देखिए कि जो मां कह रही है, मां जवाब में ये कहती हैं कि क्या तुम भोजन करने से ऊब रही हो, यानी कि तुमने भोजन की करने की निरंतरता को बनाए रखी है। ठीक इसी तरह से मैंने भी भोजन बनाने की निरंतरता को बनाए रखी है। ये कितना खूबसूरत उत्तर है, मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत और गहरा उत्तर कोई हो सकता है। भले ही सामान्य रूप में सुनने में आपको लगे कि यार ये भी कोई उत्तर हुआ, लेकिन मित्रों जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर उत्तर भला और हो कौन सा सकता है। पहली बात तो यह है कि अगर वो ये कह रही हैं जैसा कि उन्होंने कहा ही है, तो निरंतरता उनके लिए बहुत ही सहज चीज है। ये कोई बौद्धिक उपक्रम नहीं है कि इसके बारे में सोचा जाए, इसको मैकेनाइज्ड किया जाए, इसके बारे में किसी से उपाय की पूछा जाए, कुछ नहीं। उन्होंने सीधे से मान लिया है कि भाई भोजन बनाना मेरा काम है और मैं अपना काम कर रही हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आपको इसमें क्या कोई बहुत ही गहरा सिद्धांत छिपा हुआ दिखाई नहीं देता? दूसरी बात वो पूछ रही हैं कि तुम क्या भोजन से उबती हो, तो कह रही कि नहीं, भोजन से मैं नहीं उबती हूं, भोजन मैं रोज करती हूं। तो अब आप देखें कि ये इस प्रश्न में क्या भाव छिपा हुआ है। इस प्रश्न में जो भाव छिपा हुआ है, मदर और जो डॉटर है उनके बीच का रिश्ता छिपा हुआ है। मदर इसके जरिए ये कहना चाह रही है कि मैं जो भोजन बनाती हूं वो तुम्हारे लिए जरूरी है, और जो तुम्हारे लिए जरूरी है, चूंकि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तो जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है वह चीज मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है। और जब कोई चीज जरूरी हो जाती है तो फिर उसमें निरंतरता के बाधित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भोजन करना तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम उसकी निरंतरता को बनाए रखती हो। तुम्हारा पेट भरना मेरे लिए जरूरी है तो मैं भोजन बनाने की निरंतरता को बनाए रखती हूं। तो उसमें ऐसी सोचने की कौन सी बात हो गई, इसमें प्रश्न करने की कौन सी बात हो गई। आप देखिए कि वो इस काम को जो लगातार 50 वर्षों से कर रही है कितनी सहजता के साथ ले रही है, यानी कि वो तो मेरे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, उससे अलग मैं कैसे हो सकती हूं, या यूं कह लीजिए कि कोई मेरे उस काम को मुझसे अलग कैसे कर सकता है। वो तो जीवन का उसी तरह से हिस्सा बन गया है जो मैं अनजाने में करती चली जा रही हूं, जैसे कि मैं सांस ले रही हूं, जैसे कि मैं पलकों को गिरा रही हूं और उठा रही हूं, उसी तरह से मैं भोजन बना रही हूं और वो निरंतरता निभ रही है। इसी में जो तीसरा तत्व है आप देखिए, वो है प्रेम का, प्यार का, बेटी के प्रति मां का प्यार। और प्यार से भी बड़ी बात दुलार, कर्तव्य बोध से ही चीजें नहीं सधती हैं। जहां सिर्फ कर्तव्य बोध का भाव होता है, केवल ड्यूटी की बात होती है, वहां चीजों में हो सकता है कि थोड़ा सा विखंडन पैदा हो जाए, डाइवर्शन भी आ जाए, लेकिन जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहां कभी भी डाइवर्शन नहीं आता। उसके लिए कहीं बाहर से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती है, कहीं मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो अंदर से उपजता है कि भाई मेरे मन में इसके प्रति प्यार है तो है, और उस प्यार के लिए मैं कर रही हूं तो कोई बहुत बड़ा नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने प्यार का प्रतिदान दे रही हूं, प्यार की अभिव्यक्ति कर रही हूं, वहां कर्तव्य की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस छोटे से उदाहरण में आप देखिए कि कितने गहरे उत्तर छिपे हुए हैं। इसके साथ ही साथ कंवलजीत जी ने जो अपनी ओर से कुछ लिख करके भेजे हैं, चार पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, वो चार पॉइंट्स मैं आप सबके सामने और रखना चाहूंगा। पहला उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी, हम जो भी काम करें उसमें रचनात्मकता को हमें शामिल करना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि पैशन, जो हम करें उसमें हमारी भावनाओं की तीव्रता होनी चाहिए, वो हमारा जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे यह करना ही है, बहुत सही पॉइंट है। तीसरा उन्होंने कहा कि वैरायटी, हम देखें कि हम जिस एक काम को कर रहे हैं कैसे उसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और अगर करने का तरीका अलग अलग नहीं है तो फिर बीच बीच में गैप दे करके करते रहें तो उससे फिर उसमें निरसता नहीं आएगी, वह काम हमें बोझिल नहीं लगेगा। और चौथी बात उन्होंने कही कि सेटिस्फेक्शन, जब हमें किसी काम से संतोष मिलने लगता है, आत्मसंतोष का अनुभव होने लगता है, तो सीधी सी बात है कि फिर उस काम की निरंतरता को निभा पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो दोस्तों, यहां मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। जो कंवलजीत कौर और उनकी माँ के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी, जो उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है, मैंने उसकी थोड़ी सी अपने ढंग से व्याख्या की है। और सच पूछिए तो आज का यह जो मेरा उत्तर है, ये पूरी तरह से कंवलजीत कौर को ही समर्पित है, उनका ही उत्तर है। तो इसीलिए कंवलजीत जी, मैं आपके इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यह जो क्षमता है वह ईश्वर दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही 2 दिनों की इजाजत चाहते हुए आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।